मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 26 अगस्त 2019 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत आत्मीयता के साथ स्वागत भी करता हूं। दोस्तों, पहले एक सूचना यह है कि शायद आपको मालूम हो कि आईएएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए मेरी दो पुस्तकें आई हैं। पहला तो है आप आईएएस कैसे बनेंगे भाग एक, और दूसरी किताब है आप आईएएस कैसे बनेंगे भाग दो, और ये दोनों हिंदी में थी। इसमें से जो भाग एक है वो अंग्रेजी में भी आ गई थी और स्टूडेंट्स लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि इसका जो भाग दो है वह भी अंग्रेजी में उन्हें उपलब्ध कराया जाए। तो आप सबके लिए सूचना यह है कि अब भाग दो का भी अंग्रेजी वर्जन आ गया है और उस किताब का शीर्षक है हाउ टू बिकम एन आईएएस पार्ट टू। ठीक इसी तरह से फ्रेंड्स, मेरी एक किताब पहले आई थी हिंदी में, स्टूडेंट और प्रेम की समझ, इसका भी अंग्रेजी वर्जन आ चुका है। अंग्रेजी वाली पुस्तक का नाम है स्टूडेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लव। तो आइए अब मुख्य विषय पर बात करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने ये फैसला किया है कि हम लोग खासकर करेंट अफेयर्स पर तो लगातार डेली ऑडियो लेक्चर के अंतर्गत बात करते रहते हैं, और बीच बीच में आपने महसूस किया होगा कि फिर किसी एक सब्जेक्ट को लेकर के फिर उस सब्जेक्ट के डिफरेंट टॉपिक्स पर भी हम लोग बीच बीच में बातें करते हैं। इस तरह की चीज़ें आपको साल में लगभग 2-3 बार देखने को मिल जाती हैं। तो फिलहाल मैंने यह फैसला किया है कि अब हम लोग थोड़ी सी इकोनॉमिक्स पर बातें करें, यानी कि अब मैं कुछ दिनों तक आप सबसे करेंट अफेयर्स पर बातें न करके जो आपके जनरल स्टडीज़ का थर्ड पेपर है, और थर्ड पेपर में तो कई टॉपिक हैं, उसमें जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का टॉपिक है उस पर कुछ बातें करूंगा। और खासकर इस विषय पर बात करने के लिए मैंने उन टॉपिक्स को चुना है जिनका सीधा संबंध आपके प्री एग्जामिनेशन से है, यानी कि प्री एग्जामिनेशन में इन टॉपिक्स से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि जो आपके इकोनॉमिक्स का सिलेबस है उसे दो भागों में बांटा जा सकता है, बांटा जाना ही चाहिए। उसका पहला पार्ट तो सैद्धांतिक होता है, जिसमें अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत होते हैं, कुछ सिद्धांत, उनके बारे में जानकारी आपको हासिल करनी होती है, और उसका जो दूसरा पक्ष होता है उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्या है, जिसमें कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उद्योग का क्षेत्र, आयात निर्यात, इस तरह की ढेर सारी बातें शामिल होती हैं। और बट नेचुरल है कि ये जो सेकेंड पार्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, ये करेंट से बहुत ही घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ पार्ट होता है, बहुत ही घनिष्ठ रूप से, क्योंकि रोज इस क्षेत्र में घटनाएं घट रही हैं, रोज सरकार की कुछ ना कुछ नीतियां आ रही हैं, रोज नई रिपोर्ट्स आ रही हैं, रोज नए हमें डेटा मिल रहे हैं। और सच पूछे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का यही सबसे बड़ा चैलेंज भी होता है कि आप कैसे जो परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तन के साथ अपना कदम ताल कर सकते हो। तो अब देखिए, जहां तक कदम ताल करने की बात है, यानी कि करंट अफेयर्स की बात है, उसके लिए हम लोग करंट अफेयर्स के तहत बात करते ही रहते हैं, आप अखबार पढ़ते हैं, न्यूज सुनते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप न्यूज सुनते हैं और अखबार पढ़ते हैं, और खासकर इकोनॉमिक टाइम्स और अगर आप बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, तो पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का ही अखबार है, तो आपके सामने सबसे बड़ा संकट ये उठकर खड़ा होता है कि इनमें से आप किसे अपने लिए जरूरी समझें और किसे छोड़ दें। बिल्कुल पूरी बातों को तो आप जरूरी समझ नहीं सकते, और अगर पूरी बातें आप जरूरी समझ लेंगे तो मान करके चलिए जो वास्तव में जो जरूरत की चीजें थी वो आपके हाथ से छूट जाएंगी, तो पढ़ना न पढ़ना बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी चुनौती खासकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले सब्जेक्ट में होती है कि आप उनमें से किन किन का चयन करें, यानी कि आप किन्हें अपने लिए इंपॉर्टेंट माने, इसका हल क्या है। सच पूछे तो इसके हल के रूप में ही मैंने फिर कुछ दिनों तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जुड़े अलग तरीके के टॉपिक पर बात करने की सोची। मैं यहां आप लोगों को बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि देखिए, आपके बकायदे इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड सिलेबस दिया हुआ है और उसमें कुछ पॉइंट्स भी डिटेल में दिए हुए हैं, आप अपना सिलेबस उठा करके देखिए। लेकिन ये कभी मत समझिएगा कि उसमें चूंकि बहुत ही विस्तार के साथ, अपेक्षाकृत विस्तार के साथ बातें कही गई हैं, तो यही अपने आप में सफिशियंट है, नॉट एट ऑल। बहुत से ऐसे टॉपिक, बहुत से क्या, मैं समझता हूं कि आधे से अधिक ऐसे टॉपिक होते हैं जिनका उल्लेख आपके पाठ्यक्रम में है ही नहीं, लेकिन उन पर बकायदे प्री में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मेंस में भी पूछे जाते हैं। तो आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ सकता है, सवाल आप पूछ सकते हैं मुझसे, तो फिर उन्हें सिलेबस में शामिल क्यों नहीं किया गया। इनफैक्ट दोस्तों, सच पूछिए तो इस तरह के जो लगातार विकसित होते हुए विषय हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स एक डेवलपिंग सब्जेक्ट है, वो लगातार बढ़ता चला जाता है, विकासशील सब्जेक्ट है आप कह लीजिए, उनको सिलेबस में मेंशन कर पाना बहुत मुश्किल है। फिर तो आपको हर साल सिलेबस बदलना पड़ेगा। और देखिए, सीधी सी बात है, आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, और अगर आपका सब्जेक्ट, और यदि आपके सब्जेक्ट का नाम ही है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो बात खत्म हो गई। अब आप देखिए कि इकोनॉमिक के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में लगातार क्या-क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं। आपको इस शीर्षक को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, इस नजरिए से देखना होगा, तभी जाकर के आप सही मायने में इस विषय के साथ न्याय कर पाएंगे। और आप देखिए कि आप चाहे प्री एग्जाम में देख लीजिए या मेंस में देख लीजिए, इकोनॉमिक्स पर काफी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जहां तक उसके सैद्धांतिक पक्ष की बात है, आप पाएंगे कि सैद्धांतिक पक्ष से ज्यादातर क्वेश्चंस नहीं होते हैं, मेंस में तो खैर बिल्कुल ही नहीं होते हैं। हाँ, प्री में जरूर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि यदि आप अर्थशास्त्र के मूलभूत सिद्धांतों को नहीं जानते हैं, ब्याज दर क्या होती है, मांग और पूर्ति कैसे आपस में काम करते हैं, जो आपके रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, ये जो सारा जो हमारा जो सिस्टम है, इस सिस्टम की जानकारी अगर आपको नहीं है, तो जो प्रश्न पूछे गए हैं, हालांकि हैं वो भले अप्लाइड किस्म के, यानी कि व्यावहारिक किस्म के, लेकिन आप उनके उत्तर नहीं दे पाएंगे। मतलब सीधे सीधे सिद्धांतों पर नहीं पूछे जाएंगे, उन सिद्धांतों को व्यवहार में कन्वर्ट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर उसका जो दूसरा पक्ष होता है वह इकोनॉमिक डेवलपमेंट का होता है। दोस्तों, इसका सिलेबस क्या होगा, इसको लेकर के बकायदे यूट्यूब पर मेरा एक प्रोग्राम है, और मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज आप उस यूट्यूब के प्रोग्राम को जरूर सुने और ध्यान से सुने। उसमें मैंने बहुत से ऐसे टॉपिक्स को शामिल किया है जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन की दृष्टि से जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जब तक आप एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट को नहीं समझेंगे कि उसकी डिमांड क्या है, तब तक सीधी सी बात है कि आपका ध्यान, जब आप अखबार पढ़ेंगे, न्यूज़ सुनेंगे, तो उन बातों पर जाएगा ही नहीं, उन टॉपिक्स पर जाएगा ही नहीं। और जब आपका ध्यान नहीं जाएगा, तो फिर आप कैसे समझेंगे कि हाँ, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बार यदि आपने अच्छे से तैयारी कर ली इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तब फिर आप देखिए कि चाहे आपको 50 पेज का अखबार क्यों ना दे दिया जाए, आपको 50 पेज की मैगजीन क्यों ना दे दी जाए, आप बड़े आराम से 50 पेज के अखबार को पढ़ने में आपको अपने हिसाब से ज्यादा 50 मिनट लगेंगे। और ठीक है, मैगजीन के साथ भी होगा, क्योंकि आप फटाफट पन्ने पलटते जाएंगे, और अगर किसी टॉपिक की आपको जरूरत महसूस हुई, तो उस पर भी आप फटाफट ध्यान देते हुए समझ जाएंगे कि नहीं, मेरे इस काम का केवल ये चीज है, मेरे काम की केवल ये बात है, बाकी आप छोड़ते चले जाएंगे और उन्हें आप नोट कर लेंगे। सच पूछे तो इकोनॉमिक्स में जो स्टूडेंट को परेशानी होती है, उसे मैं बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हूं। उनकी परेशानी की जड़ ही यही है। जड़ यही है का मतलब क्या है कि उन्हें अपने सिलेबस का बहुत अच्छे तरीके से चूंकि ज्ञान नहीं होता है, इसीलिए वो समझ नहीं पाते हैं कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। और वैसे मैं आपको एक बात और भी बताना चाहूंगा जो आपके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है, वो ये कि आप ये मत समझिएगा कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सिलेबस है वो बहुत बड़ा है। नॉट एट ऑल फ्रेंड्स, वो बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, सिलेबस थोड़ा सा है, बहुत बड़ा नहीं है। और अगर इस थोड़े से सिलेबस की आप मूलभूत जानकारी हासिल कर लेते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, मूलभूत जानकारी, यानी कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग, देखिए मैंने मूलभूत ज्ञान की बात नहीं कही है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग यदि आपके पास आ जाती है, तो आपकी क्षमता, जिसे कैपेसिटी बिल्डिंग कहेंगे, इतनी हो जाती है कि फिर ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो टॉपिक है, या यू कह लीजिए एज सच जो सब्जेक्ट है, आपके लिए बहुत प्रिय हो जाता है। अदरवाइज फिर आपको लगता है कि ये बहुत जटिल है, कहाँ से पूछा जाएगा, कितना पूछा जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, किससे तैयारी करें, क्योंकि तैयारी करने के लिए जब आप किताबें उठाते हैं तो किताबें आपको बहुत भारी भरकम मिलती हैं, क्योंकि किताब लिखने वाले की ये कोशिश होती है कि भाई अगर वो आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बता रहा है तो चाहता है कि वो सारी चीज़ें आपको बता दे, वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको बता दे, ताकि पढ़ने वाले ये शिकायत न करे कि अरे इसमें तो ये चीज़ है ही नहीं, इसमें तो ये बात छूटी गई है। क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये बात आई कि इसमें यह बात छूट गई है तो आपको लगेगा कि ये बुक कंप्लीट नहीं है। तो किताब कंप्लीट के चक्कर में वो मोटी होती चली जाती है, और मोटी चूंकि वो हो जाती है तो आपके लिए फिर से वो एक नया संकट खड़ा कर देती है कि क्या हम इसमें से सबको पढ़ें। यहां तक कि एक पर्टिकुलर टॉपिक भी जो किताब में दिया गया होता है, मान लीजिए कि वो 10 पेज का है एक पर्टिकुलर टॉपिक, तो क्या वो 10 के 10 पेज आपके लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो मैंने अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात कही, क्या उस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको 100 पेज को पढ़ना, या यूं कह लीजिए कि याद रखना, ध्यान में रखना, या उन 100 पेजों पर आप नोट्स बनाना क्या जरूरी है, अनिवार्य है? दोस्तों, मैं समझता हूं कि यही आपकी जो अपनी बुद्धिमत्ता है, जो आपके आपका अपना जो इंटेलिजेंस है, उसका सबसे बड़ा रोल आता है। यदि आप एक बार की मैं बात कर रहा हूं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेसिक्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, नो डाउट कि यहां हम थोड़ी सी बातें उसी तरह की करेंगे आगे चल करके, लेकिन इतना वक्त तो नहीं होगा कि हम उस पर बहुत विस्तार के साथ बात कर सके, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर आप धैर्य के साथ, यानी कि इत्मीनान के साथ, जेट विमान के रफ्तार से नहीं, इत्मीनान के साथ समझते हुए धीरे धीरे एक बार इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो मान करके चलिए कि आपकी न्यू बहुत पुख्ता हो गई है। उसका कारण एक ये भी है, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी आप टॉपिक्स पढ़ेंगे आप देखेंगे कि वो बड़े व्यावहारिक किस्म के हैं, मतलब उसमें कोई ऐसा नहीं कि वो रॉकेट साइंस जैसा मामला हो, नॉट एट ऑल। आप खेती पर पढ़ रहे हैं, आप सेवा क्षेत्र पर पढ़ रहे हैं, एक कृषि क्षेत्र हो गया, दूसरा सेवा क्षेत्र हो गया, तीसरा औद्योगिक क्षेत्र हो गया, इन तीनों क्षेत्रों की क्या डिमांड है, क्या परिदृश्य है, क्या चुनौतियां हैं, इन तीनों क्षेत्रों से संबंधित सरकार की क्या क्या नीतियां हैं, उन नीतियों की क्या कमियां हैं और क्या होना चाहिए, उसके क्या परिणाम आ रहे हैं, बस यही सीधी साधी सरल सी थोड़ी मोड़ी बातें होती हैं। और फिर एक बात और, आपको उत्तर लिखना कितने शब्दों में होता है आप बताइए, मिनिमम 150 शब्द और अधिकतम 250 शब्द। आप 200, अगर हम इसका एवरेज मान लें, तो 200 शब्दों में लिखने के लिए आप कितनी सारी जानकारियां इकट्ठी करेंगे, और अगर कर भी लेंगे तो फिर उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, उसको लिखेंगे क्यों, कैसे? क्योंकि वहां तो शब्दों की एक सीमा है, तो शब्दों की सीमा भी सच पूछिए तो लिखने में तो हो सकता है कि आपके लिए संकट खड़ा कर रही हो, लेकिन मान करके चलिए कि पढ़ने के लिहाज से आपके लिए ये बहुत मददगार है। शब्दों की सीमा ही इस बात को इंडिकेट कर रही है कि आपको किसी भी टॉपिक पर बहुत विस्तार से नहीं पढ़ना है। तो अगर विस्तार से नहीं पढ़ना है, नहीं जानना है, तो कैसे पढ़ना है? तो सीधी सी बात है कि आप बेसिक चीजों को जान लीजिए, आपकी न्यू बन गई, इसके बाद फिर करंट से उस पर लगातार अपनी इमारत खड़ी करते चलिए, परत दर परत आपकी मंजिलें बनती चली जाएंगी, सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। और जब मैं करंट की बात कर रहा हूं तो आपको पिछले 2 साल के करंट्स को लेकर चलना चाहिए, और स्वाभाविक है कि 2 साल से पहले की जो बातें होंगी वो आपको किताबों में बकायदे पढ़ने को मिल जाएंगी। जब आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो उन आर्टिकल्स में भी उससे पहले की चीज़ों की काफ़ी जानकारी दी हुई होती है पृष्ठभूमि के रूप में, और आप पाएंगे कि धीरे 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 यह सब्जेक्ट जो आपको बहुत डरावना लग रहा है, जो बहुत जटिल मालूम पड़ रहा है, आपके लिए आसान होता चला जाएगा और स्कोरिंग भी। तो दोस्तों, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर में बस इतना ही, कल अपन और दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे। अब मैं आप सबसे इजाजत चाहूँगा, मेरा अभिवादन स्वीकार करें, नमस्कार।